समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्म दिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मनोज, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। दिस इज शगुन चोपड़ा विद मनोज। एंड लिसनर्स, फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज। विल बी प्रोवाइडिंग यू द रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स एंड ऑल्सो बिजनेस अपडेट्स एंड आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन India is there for you all, and all of this will be provided to you in the next 30 minutes. So make sure, listeners, you stick around with us till the end. We'll begin with the headlines first. Supreme Court declines stay on Waqf Amendment Act, direct center to file response in 7 days.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले वित्त वर्ष में भारत का स्मार्टफोन निर्यात 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा।
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह says government reserve 75% defense budget from domestic companies.
भारत IBCA को बुनियादी ढांचे और अन्य व्यय के लिए बजटीय सहायता प्रदान करेगा।
UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट says India expected to remain fastest growing major economy with a 6.5% growth rate in 2025.
IPL T20 में आज शाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से मुंबई में होगा।
And now, listeners, it's time for our segment Dateline India, and we will be taking a look at the developments taking place at the national or global level. And today, in this particular Dateline, we'll be talking about World Hemophilia Day.
विश्व हेमोफीलिया दिवस दुनिया भर में हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हेमोफीलिया की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। हेमोफीलिया एक गंभीर बीमारी है। इस समस्या में शरीर में ब्लड डिसऑर्डर की समस्या होती है। इसमें लोगों के शरीर में ब्लड क्लॉट की प्रक्रिया बंद हो जाती है, लेकिन समय से जांच होने और इलाज मिलने पर इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। हमने एम्स के हेमाटोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल अग्रवाल से बात की। उन्होंने हमें इस बीमारी का निदान बताया।
शरीर में ये जो फैक्टर्स कम है, इनका सप्लीमेंटेशन करके इसका इलाज किया जाता है। तो फैक्टर 8 की कमी होने पर फैक्टर 8 की कंसेंट्रेट, फैक्टर 9 की कमी होने पर फैक्टर 9 की कंसेंट्रेट से इसका इलाज किया जाता है। अगर ये अवेलेबल ना हो तो कुछ मरीजों में शुरुआती ब्लीडिंग रोकने के लिए FFP वगैरह या प्लाज्मा का प्रयोग भी या क्रायो का प्रयोग किया जा सकता है। नियमित रूप से दिए जाने में ब्लीडिंग को बचाया जा सकता है। अदरवाइज अगर ब्लीडिंग हो तो थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में ये फैक्टर दिए जाते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि इवन जो मेजर बड़ी बड़ी सर्जरीज भी हैं, वो हम लोग फैक्टर्स की सहायता से मरीजों में करवा पाते हैं। पिछले कुछ सालों में इन फैक्टर्स के सिवा कुछ नॉन फैक्टर थेरेपी जैसे कि एमिसिजुमैब, कॉन्सिजुमैब, ये भी लॉन्च होने लगी हैं। ये जो है ब्लीडिंग को रोकने को अलग तरीके से काम करती हैं और मरीजों में काफी कारगर साबित हुई है। हीमोफीलिया के मरीजों में इनके सिवा एक जो सबसे नया चीज आ रहा है वो है जीन थेरेपी। क्योंकि ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है तो जीन थेरेपी से इस डिफेक्ट को क्लियर किया जा सकता है, बट अभी वो कुछ हद तक एक्सपेरिमेंटल या फिर ट्रायल स्टेज में इंडिया में है और बाहर के कुछ देशों में लॉन्च हो गया है।
हीमोफीलिया की बीमारी दो तरह की होती है, जो ए और बी प्रकार का होता है। बता दें, हीमोफीलिया ए एक आम प्रकार की समस्या है जिसमें खून के थक्कों को जमाने वाले प्रोटीन की कमी के कारण हो सकता है। वहीं हीमोफीलिया बी में लोगों के शरीर में थक्का बनाने वाले कारकों की कमी के कारण होती है। इस दोनों समस्या से पीड़ित लोगों को लंबे समय तक ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। इसके अलावा इस बीमारी के कारण लोगों को हड्डियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है।
And now, Manoj, let's tell our listeners about the theme. The theme for 2025 is Access for All, Women and Girls Bleed Too. And this is a call to take action for the global community to recognize and also to address, call to action for the global community to recognize and also to address the specific needs of women and girls with bleeding disorders. Despite advances in care and treatment, these individuals, they often remain overlooked or underserved. The theme shines a spotlight on this disparity and brings much needed attention to the challenges that they face. And these include, first one, underdiagnosis. And this is commonly associated with males, this particular disease. But this leads to belief that women cannot have this condition. However, women can be carriers and some may also experience bleeding symptoms similar to those of men. The number two challenge here is lack of awareness. This great challenge is there, the greatest challenge, one of the greatest challenges for women and girls with bleeding disorders. Lack of awareness among both the general public and also the healthcare professionals.
हीमोफीलिया की बीमारी में लोगों को शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज न करते हुए डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की बीमारी होने पर समय से इलाज मिल सके। ये लक्षण है हल्की चोट लगने पर खून बहना बंद ना होना, जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या, शरीर में अचानक से अंदरूनी ब्लीडिंग होना, त्वचा के रंग में बदलाव या त्वचा पर बैंगनी धब्बे बनने, सर्जरी के बाद खून बहना न रुकना, नाक से खून बहने की समस्या, मांसपेशियों में दर्द और सूजन की समस्या। एम्स के हेमाटोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल अग्रवाल ने हमें इस बीमारी के उपचार में के बारे में निम्नलिखित बातें बताई।
हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें शरीर के अंदर फैक्टर 8 या फैक्टर 9 दोनों में से किसी एक प्रोटीन की कमी होती है। ये जो प्रोटीन होते हैं बॉडी में खून रोकने का काम करते हैं, तो जिन मरीजों में इनकी मात्रा बहुत कम होती है हीमोफीलिया के, तो उनमें खून बहने के चांसेस रहते हैं। खून बहना जो मरीजों में कॉमनली मिलता है वो जोड़ों में होता है। इसके सिवा कभी कभी खून जो बहता है वो मसल्स में, पेट में या फिर दिमाग में, पेट से अलग अलग जगह से खून बहने के चांसेस रह सकते हैं। इसमें जो डायग्नोसिस है इन फैक्टर्स का लेवल देखकर हम लोग कर सकते हैं, वो लैब से टेस्ट होकर इनका फैक्टर का जो अमाउंट है वो हम लोग चेक कर सकते हैं।
Well, as we were talking about it, Manoj, that this year's theme, this is for Access for All, Women and Girls Bleed Too. So there is definitely a call to take action for the specific needs of women and girls with this particular bleeding disorder.
कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है, ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है, ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Firstly, beginning with Ladakh here, in a landmark development for Indian adventure tourism, the Ladakh Ski and Snowboard Association has identified a stunning new summer skiing destination at Umba Peak, nestled at an altitude of 4,800 meters.
The pristine high-altitude terrain ideal for downhill and heli-skiing adds another jewel to Ladakh's crown, offering enthusiasts a rare opportunity to ski amidst the blooming apricot orchards and majestic Himalayan views. This discovery, following the earlier recognition of Manmantop in Dras, cements Ladakh's position as India's only region with skiing opportunities extending from January through June, transforming it into a year-round adventure heaven. Engineer Saeed Murtuza, a prominent voice in Ladakh's skiing community, hailed the announcement as a breakthrough. This is not just about skiing. This is about experiencing Ladakh's full beauty. Imagine skiing in May with snow under your feet and apricot blossoms all around. Nowhere else in India can offer this, he said. The exploration team was led by professional skier and coach Saeed Shamsuddin, who emphasized the terrain's suitability for heli skiing. This natural slope is a dream for heli skiing lovers. The altitude, snow quality and breathtaking scenery, including blooming apricot trees, make it a unique and unforgettable experience, he shared. With efforts like this, Ladakh, the youngest union territory in India, is fast evolving into a global hotspot for adventure sports, offering untouched alpine terrain, extended skiing season, and the rare experience of skiing among apricot blossoms in the lap of the Himalayas. For Parikrama, this is Anadali from Kargil Union Territory of Ladakh.
Yes, from Ladakh, we'll take you to Hyderabad. Well, two Hyderabad-based startups could find place in top seven finalists of the Anti-Piracy Challenge under the Create in India initiative of the World Audiovisual and Entertainment Summit 2025, or WAVES, with their innovative solutions. The finalists were selected from a pool of 1,600 contestants, which included startups, technology providers, research institutions, and students from across the country. We have more on this from our Hyderabad correspondent.
Under the Create in India initiative of the World Audiovisual and Entertainment Summit 2025, the Anti-Piracy Challenge saw about 1,600 registrations. Out of them, 132 concrete ideas have been submitted from various startups, technology providers, research institutions, and students from across the country. Among the promising anti-piracy solutions, seven have been shortlisted from Mumbai, Pune, Noida, Agra, and Siliguri, besides two from Hyderabad. All of them focused on advanced technology like fingerprinting, watermarking, and blockchain. Bharat Nalibola, product specialist at Neuronix, along with Arun Kumar Kanikipati, submitted an idea of comprehensive video protection suit. When contacted, Bharat explained that Neuronix, an artificial intelligence company, introduced an advanced anti-piracy SaaS solution, NTrack, developed in the country. He said it offers a powerful combination of features, including dynamic watermarking, watermark extraction, piracy detection, and others, all tailored for both live and pre-recorded video content. He further said it helps identifying the exact source of leaked content and enables quick and effective action to protect the creative assets. He says in an era where streaming is rapidly evolving across platforms and social media, NTrack can be a smart and reliable shield against piracy.
The anti-piracy solutions should evolve with the way content is consumed or shared in the platforms, and NTrack offers creators, distributors, media houses and studios confidence to publish their content without the fear of losing control or revenue.
A finalist will be presenting their innovative solutions to a final jury and a live audience on the WAVES platform in Mumbai next month. Lakshmi for Parikrama, Hyderabad.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहाँ की हलचल.
फर्स्ट फोकसिंग ऑन शूटिंग, इंडियन पेयर ऑफ सुरुचि इंदर सिंह एंड सौरभ चौधरी हैव क्लिंच्ड गोल्ड एट ISSF वर्ल्ड कप 2025 इन लीमा पेरू. द इंडियन ड्यूओ आउटक्लास चाइनीज ड्यूओ ऑफ कियांचन याओ एंड काई हू by 79 in the final of 10-meter air pistol mixed team event.
IPL T20 क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे. ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. प्रतियोगिता में कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक सुपर ओवर में पराजित किया. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमों का स्कोर बराबर होने के बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ. सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने केवल 11 रन बनाए. दिल्ली कैपिटल्स ने दो गेंद शेष रहते जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया.
Now let's give you the updates of the business world. What's happening in the business world? First, the domestic benchmark indices rebounded sharply today after a weak opening, led by strong buying in financial stocks, firm global cues and sustained foreign fund inflows. The 30 share index at the Bombay Stock Exchange Sensex jumped 1,509 points or 1.96% to close at 78,553. The National Stock Exchange Nifty 50 gained 414 points or 1.77% to settle at 23,851. Both indices closed in positive territory for the fourth consecutive session. Now, in the global crude market, Brent crude was trading 0.9% up at $66.44 per barrel, and WTI crude was trading over 1% up at $63.18 per barrel when reports last came in. And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember freedom fighter Valangaiman Sankaranarayana Srinivasa Shastri, who died on the 17th of April 1946. A member of the Servants of India Society, Shastri also served as a member of the Indian National Congress from 1908 to 1922.
Shastri was born on 22nd of September 1869 in Tanjavur district, Tamil Nadu. He met Gopal Krishna Gokhale for the first time in 1906 and was drawn towards Gokhale Servants of India Society. He joined the organization, becoming its president in 1915. He joined the Indian National Congress in 1908 and became the secretary of the Madras District Congress Committee in 1911.
Shastri served as a member of the Madras Legislative Council from 1913 to 1916, the Imperial Legislative Council of India from 1916 to 1919, and the Council of State from 1920 to 1925. He opposed the Rowlatt Act and delivered a well-appreciated speech in the Imperial Legislative Council denouncing the bill.
Shastri also functioned as India's delegate to the League of Nations and as member of the Privy Council of the United Kingdom and an agent to the Union of South Africa. In 1924, he accompanied Annie Besant on a visit to England demanding home rule for India.
Shastri was also a close friend and associate of Mahatma Gandhi, who addressed Shastri as his elder brother in writings.
During 1930 to 31, he participated in the roundtable conferences in London to discuss India's future and was instrumental in bringing about the Gandhi-Irwin Pact. He strongly opposed Muslim League demands for the partition of India. On Shastri's death, Gandhiji paid a tribute to Shastri in a condolence message in the Harijan, saying that
death has removed not only from us, but from the world, one of India's best sons.
We salute the great Indian. We also remember Gandhian freedom fighter and writer Nityananda Mohapatra, who died on 17th of April 2012.
Nityananda was imprisoned three times by the British between 1930 and 1942 for nationalist activities. Some of his early writings, such as the poem Swarajyapala and short story Mossi, were banned by the British. After independence, he joined electoral politics and was in the Odisha Assembly from 1957 to 1971. He was the Minister of State for Supply and Cultural Affairs from 1967 to 1971.
Son of celebrated Odia poet, Kanto Kobi Lakshmikanta Mohapatra, Nityananda came to literary prominence as editor of Odia magazine, Dagara, and as a short story writer after independence. Till his death, Nityananda continued to work for the betterment of the nation. We salute the great nationalist.
We also remember revolutionary freedom fighter Anurup Sen, who died on the 17th of April 1924. A resident of Chittagong, now in Bangladesh, Anurup Sen was involved with various revolutionary parties. He was detained for participating in the non-cooperation movement. Anurup was one of the five, along with Surya Sen, Nagin Sen, Ambika Chakraborty and Charu Bikash Datta, to form the core of the initial Chittagong Revolutionary Group. He was arrested in the Dakshineshwar bomb conspiracy and died in internment in Varanasi on the 17th of April 1924. We salute the great son of the soil.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्म दिवस.
Well, we'll begin by first honoring the legacy of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, a distinguished personality, an ideologist, a philosopher, teacher, writer and a great thinker. Well, he had a strong knowledge of metaphysics and idealism. He became the president of India after serving a diplomatic career. Well, in the distinguishing career that he had, a very distinguished career, the foremost part he played was as a teacher. He started as a teacher and always considered teaching the most eminent and valued profession. His admirers and students value his ideologies and knowledge as a source of learning. He was a great teacher who developed a strong connection with the students during the tenure which he spent in college. Well, let's listen to his address first, his voice.
Universities are the means by which the traditions of a country, intellectual, artistic and ethical, the technical skills, these things are transmitted from one generation to another. These are institutions which make for the progress of any community. We deal here with human beings, not with dead material. It is our ambition to make them full human beings. Education is for the whole man to think, to feel, to do, to be.
आज पुण्यतिथि है हिंदी के जाने माने उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और व्यंग्यकार नरेंद्र कोहली की. नरेंद्र कोहली ने संस्मरण, निबंध, पत्र आदि में भी अपनी रचनात्मकता प्रस्तुत की है. साथ ही आलोचनात्मक साहित्य में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई. हिंदी साहित्य में महाकाव्यात्मक उपन्यास की विधा को प्रारंभ करने का श्रेय नरेंद्र कोहली को जाता है. पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों की गुत्थियों को सुलझाते हुए उनके माध्यम से आधुनिक समाज की समस्याओं और उनके समाधान को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना कोहली के साहित्य की एक विशेषता है.
Well, today we are also remembering Ray Edward Cochran. He is professionally known as Eddie Cochran. Well, a rock and roll musician, his songs such as 20 Flight Rock, Summertime Blues, they are exceptional. And he has experimented basically with multi-track recording, distortion techniques and also overdubbing. And even on his earlier singles, he has done so. He played the guitar, piano, bass and drums. So as this is summertime, let's listen to his song Summertime Blues.
I'm a gonna raise a fuss, I'm a gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Yeah, every time I call my baby, try to get a date, my boss says,
no dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
आज पुण्यतिथि है ब्रिगेडियर भवानी सिंह की. वे जयपुर के महाराजा थे. बांग्ला मुक्ति संग्राम के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए 1971 के युद्ध में उनके योगदान के लिए 1972 में महावीर चक्र प्रदान किया गया. महाराजा सवाई भवानी सिंह 24 जून 1970 से 28 दिसंबर 1971 तक जयपुर के महाराजा रहे. इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी. उनको सेवानिवृत्त होने के बाद ब्रिगेडियर के पद से सम्मानित किया गया.
साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन. साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन.
Well, listeners, today we are also remembering Alexander Joy Cartwright. Well, today it's his birth anniversary. Founding member of the New York Knickerbockers Baseball Club in the 1840s, and he was sometimes also referred to as father of baseball because of his importance in his role of the development of this particular game.
आज जयंती है सुप्रसिद्ध मलयालम साहित्यकार तकाजी शिवशंकरा पिल्लई की। मलयालम के अग्रणी लेखकों में शुमार तकाजी शिवशंकरा पिल्लई ने अपने लेखन के माध्यम से गरीबों की समस्याओं को समाज के सामने रखा। अपने कहानी संग्रहों में उन्होंने व्यक्ति को अपने समय की विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए प्रस्तुत किया। तकाजी शिवशंकरा पिल्लई के द्वारा रचित उपन्यास चिम्मीन के लिए उन्हें सन 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और फिर सन 1984 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान साहित्य जगत में उनके कृतित्व का भी सम्मान है।
Well, as you told, Manoj really is known for his vivid portrayal of the lives and struggles of the people of Kerala as well and other cities as well. He was a master storyteller whose works captured the essence of Kerala's culture, society and history. And through his writing, one of his famous works that you have named, Chimmeen, he is this particular work of his has been adapted into a successful film and stage production also. Now let's talk about another musician. Earl Johnson Foe. Well, he's known as Earl King professionally, singer, guitarist and songwriter. Well, most active in this particular genre, blues music. Well, the composer of blues standards such as Come On, which we are playing for you, and Big Chief, he was an important figure in New Orleans R&B.
I love you, baby, like a mine of love gold. So come on, baby, let the good time roll.
आज जन्म दिवस है भारत के बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी गीत श्रीराम सेठी का। उन्हें गीत सेठी के नाम से भी लोग जानते हैं। वे सुर्खियों में आए वर्ष 1979 में जब उन्होंने बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों खेलों के जूनियर टाइटल जीत लिए थे। उस वक्त माइकल फरेरा और सुभाष अग्रवाल बिलियर्ड्स के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे। गीत सेठी ने कुछ ही समय में सीनियर रैंक में प्रवेश पा लिया था। 9 बार विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले गीत सेठी को 1992-93 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Well, Geet Sriram Sethi is one of the giants of the modern era. Well, he won his first major title in 1982 when he defeated Michael Ferreira in the final of the Indian National Championship. Well, apart from this, he authored a motivational book called Success Versus Joy, and he also co-founded Olympic Gold Quest, a foundation for the promotion of sports in India.
आज जयंती है सिद्धार्थ सूर्य नारायण की, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। वे एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करते हैं। अभिनय के अलावा वे एक पटकथा लेखक, निर्माता और पार्श्व गायक के रूप में भी फिल्मों में शामिल रहे हैं। उन्हें कई विज्ञापनों में भी दिखाया गया है। वे 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण और 1 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं।
அமுத கடல் உனக்குத்தான், ஆறாமழை உனக்குத்தான், நீங்கா நிழல் உனக்குத்தான், நீ கண்மணி எனக்குத்தானே, பொருந்தி போ நீ தோளோடு, மடியில் ஊஞ்சல்லாடு என் பல உன்னோடு.
ஆஜ் ஜன்ம திவஸ் ஹை கெனடி ஜான் விக்டர் கா, जिन्हें पेशेवर रूप से विक्रम के नाम से जाना जाता है। वे एक भारतीय अभिनेता और पार्श्व गायक हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। वे तमिल सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्होंने दक्षिण के 8 फिल्म फेयर अवार्ड, 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार और तमिलनाडु सरकार से कलैमामणि पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं। भारतीय हस्तियों की कमाई के आधार पर विक्रम को 2016 और 2018 के लिए फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल किया गया था। विक्रम ने रोमांस एंड कधल कनमनी से शुरुआत की। इसके बाद बाला की त्रासदीपूर्ण फिल्म सेतु के साथ उन्हें बड़ी सफलता मिली। इसके बाद ढील, जेमिनी, धूल, सामी, अन्नियन, रावणन, देवा, थिरुमगल जैसी हिट फिल्मों में दिखाई दिए।
Thank you.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए मनोज और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। नमस्कार।